समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अनीता आनंद। आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। For all of you, we have a selection of news as always. Our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All this over the next 30 minutes. So relax, sit back, smile more, appreciate the little things that bring us joy. And let's begin our program with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों से संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने और अच्छे आचरण का प्रदर्शन करने का आग्रह किया।
Discussion on the motion of thanks to the President's address continues in both Houses of Parliament. Prime Minister Modi replies to the motion in Lok Sabha.
असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे 19 जिलों के 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। गुजरात, उत्तराखंड और बिहार में भारी बारिश की खबर है।
T20 वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन टीम रिमेन्स स्ट्रैंडेड इन बारबाडोस एज हरिकेन बैरल इन कैरिबियन सी इंटेंसिफाइज। And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. Today we talk about the World Sports Journalist Day.
नेल्सन मंडेला ने कहा था कि खेल की ताकत से दुनिया को बदला जा सकता है। ये लोगों को एकजुट करती है, उन्हें प्रेरणा देती है और नस्लीय भेदभाव दूर करने में ये सरकारों से भी ज्यादा ताकतवर है।
World Sports Journalist Day is celebrated on the 2nd of July. Well, our listeners were surely glued to their screens when India lifted the T20 Cricket World Cup. Agarshita, I'm sure most of us were also watching. The cricket-crazy country erupted with midnight celebrations as fans in blue Indian shirts took to the streets across cities to express their happiness. But have you ever thought of people who bring to you, the fans, all the stats, scores, analyses, discussions to keep the fans updated? Well,
gee.
And talking about the World Sports Journalist Day, it was established in the year 1994 by the International Sports Press Association, that is AIPS, during the Summer Olympics in Paris. Huge local and national associations of journalists are involved with sports news to maintain high standards of sports journalism. The purpose of the day is to recognize the effort and hard work of sports journalists. Also, this day is marked to honor the outstanding work of journalists in the field of sports journalism.
जी, इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि दुनिया भर में खेल को बढ़ावा देना और खेल पत्रकारों के समर्पण और योगदान का सम्मान करना है। आज के दौर में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का एक महत्वपूर्ण भाग है। ऐसे में विश्व खेल पत्रकारिता दिवस के अवसर पर खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, खिलाड़ियों को प्रेरित करने और खेलों के इतिहास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। खेल जगत की खबरों को लेकर स्पोर्ट्स मीडिया से जुड़े लोगों द्वारा किए गए प्रयासों को लेकर उन्हें प्रोत्साहित और सम्मान देने के लिए भी इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। जिससे खेल से जुड़े लोग अपने काम को और अधिक उत्साह के साथ लगातार आगे भी करते रहें। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से जुड़े लोगों पर यह जिम्मेदारी रहती है कि वे लगातार विश्व में होने वाली खेलों से जुड़ी गतिविधियों को लेकर लोगों तक वे खबरें पहुंचाते रहें। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे की शुरुआत साल 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना के 17वीं वर्षगांठ के दिन हुई थी। 2 जुलाई 1924 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान पहली बार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया था। हालांकि खेल पत्रकारिता की शुरुआत साल 1800 में शुरू हुई थी, इसके बाद साल 1900 से इस पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा।
And Karshita, we all know that journalism is a vast subject and consists of different types and forms. One such type is sports journalism. With the rampant increase in sports events and the glitter it attracts, sports journalism has grown to become one of the most sought-after journalism techniques. It is a style of news reporting where journalists cover live matches, analysis, conduct interviews of the players, support staff and management, and go behind the scenes also.
आज के समय में खेल करियर काफी महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक बनकर उभरा है। खेल और पत्रकारिता के प्रति विशेष रुचि और गहरी लगन रखने वाले कई लोग अक्सर खेल पत्रकारिता का रास्ता अपनाते हैं। आज पाठक खेल आयोजनों पर अधिकाधिक पठन सामग्री की मांग कर रहे हैं। ये अखबारों के पाठकों के मन पर खेल के प्रति जबरदस्त आकर्षण को दर्शाता है। ये दिन खेल मीडिया पेशेवरों की सफलता का प्रतीक है और उन्हें आम जनता के बीच खेल के बारे में जानकारी फैलाने के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है।
So sports journalism is a form of specialization with its own special rules and conditions. Whether one is a sports writer, reporter or sub-editor, he lives in a different world. Within journalism relating to sports, there are subsidiary specializations concerned with cricket, hockey, football, tennis, badminton and athletics, etc.
खेल पत्रकारिता को खेल और कहानी कहने का मिश्रण कहा जा सकता है। ये पत्रकारिता का एक रूप है जो खेल आयोजनों, खिलाड़ियों और टीमों के कवरेज पर केंद्रित है। जमीनी क्षणों से लेकर पर्दे के पीछे की कहानियों तक ये खेल पत्रकार ही हैं जो दुनिया भर के लाखों उत्साही लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट्स, कैप्शन और दिलचस्प कहानियां सामने लेकर आते हैं।
So while covering important events, a sports reporter has to collect the previous records to relate the news to the past, prepare explanatory material and also background facts, and do speculative and sometimes interpretative reporting. He must get adequate identification of the players also. He has to go beyond the mere objective of reporting the event. He has to be a trained expert, qualified not only to report but also to explain and interpret the run of the play. He has to expand the horizon of the news and he has to explain, amplify and also clarify.
खेल पत्रकारिता ये स्पोर्ट्स जर्नलिज्म हमेशा से चुनौतियों भरा क्षेत्र रहा है। सूचना तकनीक के विकास और प्रसार ने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। आज मैच के दौरान की पल पल की खबर दर्शक व पाठक के पास पहले से ही मौजूद होती है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि किस प्रकार खेल प्रेमियों का ध्यान अपनी रिपोर्टिंग और विश्लेषण की तरफ खींचा जाए। जैसे कि अनीता, बहुत ढेर सारी जो स्टोरीज होती हैं उनके जो खेल जर्नलिस्ट होते हैं वो कई टाइप्स होते हैं और वो तरह तरह की स्टोरीज रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि एडवांस स्टोरीज को वो रिपोर्ट करते हैं। इस तरह का लेखन आमतौर पर जैसे आगामी खेल के आयोजनों को लेकर होता है, जहां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दर्शकों और पाठकों में उस आयोजन को लेकर एक उत्सुकता जगाता है, या सीधे सीधे एक न्यूज स्टोरी हो सकती है, बैकग्राउंड स्टोरी हो सकती है, या फिर एक प्रोडक्शन स्टोरी हो सकती है जहां रिपोर्टर आने वाले आयोजनों को लेकर कुछ अनुमान लगाए या टीमों के पिछले प्रदर्शनों को लेकर कुछ विश्लेषण प्रस्तुत करे।
लाइक वी से दे क्रिएट अ बज़ बिफोर द इवेंट इज गोइंग टू हैपन एंड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बिगन जस्ट टू गिव द हिस्ट्री ऑफ द इवेंट In early 1800s, it was an important part of the elite class. But later, with transition in time, it became popular in the news business with a dedicated sports column. Sports journalism also gained popularity in the middle and lower classes, which led to more content coverage in the publications.
एक खेल पत्रकार को तेज नजर वाला होना चाहिए, तेज कान वाला होना चाहिए। उसे न केवल अपने परिवेश के प्रति संवेदनशील होना चाहिए बल्कि मैदान पर उत्साह को पठनीय शब्दों में ढालने की क्षमता होनी चाहिए। खेल पत्रकारों के पास विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं। उनमें खेल को जानने की जिज्ञासा, खेल के प्रति जुनून, मजबूत संचार कौशल, विस्तार पर ध्यान देना, दबाव में काम करने की क्षमता प्रदर्शित करना और विषम समय में काम करने के लिए तैयार रहना शामिल है। खेल जगत में खेल पत्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिखाते हैं। वे प्रशंसकों को सूचित रखते हैं खेल खिलाड़ियों और टीमों के बारे में नवीनतम समाचार प्रदान करने के अलावा वे एथलीटों और टीमों के प्रदर्शन पर विशेषज्ञ विचार भी पेश करते हैं। वे स्कोर और आंकड़ों से परे खिलाड़ियों की प्रेरणादायक कहानियां साझा करते हैं।
जी एंड ऑफ द मेनी क्वालिटीज दैट यू वी नॉमिनेटेड द इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम्स इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड ऑल्सो लाइक डोपिंग और करप्शन मोस्ट इम्पोर्टेंटली देयर कवरेज हेल्प्स इंक्रीज इंटरेस्ट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स बट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑल्सो फेस मेनी चैलेंजेस सिंस इट्स अ फास्ट पेस्ड environment so the news breaks quickly and reporters must keep up. There's often fierce competition to get the exclusive stories. Journalists need to adapt to new ways of delivering news. Getting interviews with top athletes and officials isn't very easy always, right?
जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लाइक तो अनीता, ये जो विश्व खेल पत्रकार दिवस है उसमें विभिन्न खेल मीडिया सदस्यों की विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों का आज हम जश्न मनाते हैं।
कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
एंड वी गो ओवर टू सिक्किम वेयर द कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड सेलिब्रेटेड द फोर्थ ग्वाला दिवस एट मनन केंद्र यस्टरडे। द इवेंट वॉज ग्रेस्ड बाय पूरण कुमार गुरुंग, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विसेज एज द चीफ गेस्ट। द प्रोग्राम बिगैन विद वेलकम एड्रेस बाय यम कुमार शर्मा, चेयरमैन ऑफ सिक्किम मिल्क यूनियन, हु हाईलाइटेड द सेलिब्रेशन्स एम टू ऑनर डेयरी फार्मर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
Mr. Gurung emphasized the government dedication to supporting sustainable agricultural practice and the dairy industry's significance in Sikkim. Dr. Sharman Rai, Secretary of Annual Husbandry and Veterinary Service, praised the substantial transformation in dairy farming under the Chief Minister's leadership. He outlined future plan, including making Sikkim a foot and mouth disease FMD free zone, achieving year-round green fodder production and establishing Sikkim as an A2 milk hub by promoting the indigenous Shiri breed of cows. Dr. T.V. Khatani, Managing Director of Sikkim Milk Union, provided an overview of the union's role and functions. He noted an increase in daily milk procurement and highlighted state-supported facilities like automatic milk collection unit and milk chilling facilities. The event included the launch of the SKEPL Farmers App or Gwala App and the Sikkim Milk Mitra App, enhancing productivity and transparency for farmer and consumer. Additionally, the area-specific mineral mixture for Sikkim and the promotion of phosphate-rich organic manure (PROM) were introduced. Awards were distributed to the best-performing village milk producer cooperative society and district. Namchi district won best performing district in the milk production. Meritorious student Shir Karki was facilitated and the Gwala Ratna Award was presented to Mr. Jeevan Prasad Sharma from Pakyong district. Dili Ramdulal, Akashwani News, Gangtok for Parikrama.
देश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून पहुंच चुका है। मॉनसून हर साल अपने साल कई चुनौतियां लेकर आता है। उत्तराखंड राज्य ने इस बार मॉनसून की चुनौतियों के बीच एक अभिनव पहल की है। राज्य सरकार ने मॉनसून के दौरान हरेला पर्व में प्रदेश भर में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड सरकार की इस पहल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारी राज्य संवाददाता साक्षी सिंह के पास।
उत्तराखंड में हर वर्ष हरेला पर्व मनाया जाता है। प्रकृति संरक्षण के लिए समर्पित हरेला में हर साल बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाता है। इस वर्ष राज्य सरकार ने हरेला पर्व को वृहद स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में हरेला के दौरान इस साल 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें 50% पौधे फलदार होंगे। सरकार की ओर से हरेला पर्व की शुरुआत 16 जुलाई से की जाएगी। शासन ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि शुरुआती 3 दिन के भीतर 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। हर जिले में अभियान के आयोजन के लिए संबंधित जिला के जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे, जो जिला स्तरीय सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक आयोजन समिति का गठन अपने स्तर से करेंगे। हर जिले की जिला स्तरीय समिति सार्वजनिक स्थानों, वनों, नदियों के किनारे, गडरे, विद्यालय, कॉलेज परिसर, विभागीय परिसर, सिटी पार्क, आवासीय परिसरों सहित विभिन्न स्थानों पर पौधे लगाएंगे। इस अभियान में स्थानीय जन प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, निकायों, संस्थान, जिला विकास प्राधिकरण, एनजीओ, वन पंचायतों सहित सेना, टीबीपी, एनसीसी, होमगार्ड, पीआरडी और स्थानीय जनता का सहयोग लिया जाएगा। आम जनता की सहभागिता से होने वाले पौधारोपण में जिलाधिकारी की ओर से नामित प्रभागीय वनाधिकारी मुफ्त पौधों की व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारी होगा। मुफ्त पौधे वितरण की अधिकतम सीमा जिला स्तरीय समिति जिले में पौधों की उपलब्धता को देखते हुए करेगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
And the start of Sports Conclave by IIT Madras will showcase its commitment to promote sports startups in India, and it plans to technologically support the Indian government in facilitating hosting Olympics 2036. Supporting indigenization in the sports goods manufacturing firms will also be a focus area. A report.
This institution wants to take the lead in creating a support infrastructure for sports tech for various players in India by creating awareness about opportunities in this space, showcasing some products and applications, enabling networking opportunities for various players and bringing both public and private players under one roof to enable collaboration opportunities. The event will support technology for various sports goods manufacturing players in India for specific products and services indigenization. The technology will provide access to quality sports education for various players in the sports ecosystem, ranging from PT teachers, coaches, referees, analysts, managers, players. It is also expected to further build digital learning initiatives of IIT Madras to operationalize a digital university for sports industry, focused courses to provide upskilling opportunities for various players in the sports value chain. This is Blissy from Akashwani, Chennai.
And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember freedom fighter Yusuf Meher Ali, who died on the 2nd of July 1950. Yusuf Meher Ali is credited with giving the slogans Simon Go Back and Quit India.
Simon Go Back! Simon Go Back!
Yusuf Meher Ali was born on the 23rd of September 1903. He founded the National Militia, Bombay Youth League and the Congress Socialist Party and played a role in several peasant and trade union movements. He also took part in the protests against the Simon Commission. He took part in the Quit India movement and was imprisoned. He was elected mayor of Bombay in 1942 while he was imprisoned in Yerawada Central Prison.
A notable writer, Yusuf Ali is credited with writing Leaders of India, The Price of Liberty and Underground Movement. The nationalist leader continued to work for the people until his death in 1950.
We also remember freedom fighter Bakht Khan, who was appointed General of the Hindustan Army of Bahadur Shah Zafar on the 2nd of July 1857. A resident of Bareilly, Uttar Pradesh, Khan was initially working as a subedar in the artillery of the British Indian Army.
He left the British service during the First War of Indian Independence in 1857 and joined the independence activists at Bareilly. He became a brigadier of the activists in Bareilly and made arrangements for arms and ammunition. In June 1857, he marched towards Delhi along with his followers.
Bakht Khan reached Delhi on the 2nd of July 1857 and was welcomed by Bahadur Shah Zafar, who called him Farzand and appointed him as the commander-in-chief with the title General. Bakht Khan reorganized the army in Delhi, gave them 6 months' advance salary and ordered them to maintain strict discipline. He also played a key role in forming the administrative council called Jalsa-e-Fauji wa Mulki to maintain law and order in Delhi.
Although he succeeded in ousting the British forces from various strongholds in Delhi, he lost in the Battle of Najafgarh on 25th of August 1857. Bakht Khan left Delhi after its fall to the British in September 1857, but continued to fight the British in Lucknow and Rohilkhand. After the uprising was suppressed, Bakht Khan escaped towards Nepal and was reported to have been killed there in action in 1859.
We also remember Mata Savan, who took part in the First War of Independence in 1857 in Gujarat. Savan highlighted the cruelties of the British and inspired his neighbours to raise their arms to overthrow the foreign rule. He was captured by the British and charged with sedition and rebellion against the company rule. Savan was sentenced to imprisonment for life with labour in irons. He died in captivity on the 2nd of July, 1859, in the Andaman Islands. We salute the brave son of the soil.
We also remember martyrs Dudhai, Bhagwan and Sahadev, residents of district Gorakhpur, Uttar Pradesh, who were sentenced to death on the 2nd of July 1923. During the non-cooperation movement, the British police of Chauri Chaura Thana opened fire on the peaceful protesters in the area, causing deaths and injuries to many. When the police ran out of ammunition and found the gathering infuriated by the firing, they retreated and hid themselves inside the police station. A few infuriated activists sprayed kerosene oil on the building and set it on fire, killing all the 23 policemen inside.
Dudhai, Bhagwan and Sahadev were among the accused and were convicted for taking part in the Chauri Chaura case. They were sentenced to death and hanged on the 2nd of July 1923.
और अब चलते हैं आर्थिक जगत की खबरों की ओर.
India's equity benchmark indices Sensex and Nifty landed in red today, raising early gains. The Sensex dropped 35 points or 0.04% to close at 79,441. Nifty declined 18 points or 0.07% to settle at 24,124. In the global crude market, Brent crude is trading at $87.19 per barrel. WTI crude is trading at $83.96 per barrel when the reports last came in. In the global commodity exchange for 5th August 2024 contract, gold is trading 71,575 rupees per 10 grams. Silver for 5th July 2024 contract is trading at 87,719 rupees per kilogram when the reports last came in.
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. भारत 23 वर्ष से कम आयु के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा. जॉर्डन के अम्मान में भारत के युवा पहलवानों ने फ्रीस्टाइल कुश्ती में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदक जीते. एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. कजाकिस्तान दूसरी ओर और किर्गिस्तान तीसरे स्थान पर रहा.
Indian men's cricket team is all set to face Zimbabwe in a 5-match T20 international series scheduled between 6th to 14th of this month. All the matches will be played at Harare Sports Club in Harare. Zimbabwe have announced their 17-member squad for the series. The most senior player of the team and experienced batsman, Sikandar Raza, will lead the young Zimbabwe team. Zimbabwe have also named the Belgian-born Antum Nakwi provisionally in the squad, as the confirmations for his citizenship status is still pending. On the other hand, India have already declared their 15-member squad against Zimbabwe. Shubman Gill will lead the Indian squad. Indian squad includes players like Dhruv Jurel, Riyan Parag, Washington Sundar, Ravi Bishnoi and others. BCCI Secretary Jay Shah told media yesterday that VVS Lakshman will be travelling to Zimbabwe with Team India, but new coach will join from Sri Lanka series. He also informed that both coach and selector appointments will be made shortly.
पुर्तगाल और फ्रांस यूईएफए फुटबॉल चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं. पुर्तगाल ने कल रात जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में स्लोवेनिया को पेनाल्टी शूटआउट में 3-0 से हराया. दोनों टीम निर्धारित समय में बराबरी पर थी, इसलिए मैच का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से करना पड़ा. अन्य क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने बेल्जियम को पराजित किया. क्वार्टर फाइनल में शनिवार को फ्रांस का सामना पुर्तगाल से होगा. और श्रोताओं, अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा या फिर आज के दिन इस दुनिया में कदम रखा.
एंड वी बिगिन दिस सेगमेंट बाय रिमेम्बरिंग अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे, द अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट. Death anniversary is today. He passed away in 1961. Best known for an economic understated style that significantly influenced later 20th century writers, he's often romanticized for his adventurous lifestyle and outspoken and blunt public image. Most of Hemingway's works were published between the mid-1920s and mid-1950s, including 7 novels, 6 short story collections and 2 non-fiction works. His writings have become classics of American literature. He's awarded the 1954 Nobel Prize in Literature, while 3 of his novels, 4 short story collections and 3 non-fiction works were published posthumously. And today is also the death anniversary of Mario Francis Puzo. He passed away on this day, that is 2nd of July 1999, the American author and screenwriter. He wrote crime novels about the Italian-American mafia, Sicilian mafia, most notably The Godfather, released in 1969, which he later co-adapted into a film trilogy directed by Francis Ford Coppola. He received the Academy Award for Best Adapted Screenplay for the first film in 1972 and Part 2 in 1974. Puzo also wrote the original screenplay for the 1978 Superman film and its 1980 sequel. His final novel, The Family, was released posthumously in 2001. A snippet from The Godfather.
आज भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक सैयद मोहम्मद अजीज अन्नबी की जयंती है. उन्होंने मुख्यतः बंगाली, उड़िया और हिंदी फिल्मों में गाने गाए. उन्होंने कोलकाता के गालिब रेस्टोरेंट में एक गायक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की. साल 1984 में वे मुंबई आए. उनकी पहली फिल्म अंबर थी, जो 1984 में रिलीज हुई. मोहम्मद अजीज ने पहली बार अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के लिए मर्द टांगे वाला गीत गाया था. मोहम्मद अजीज अपने समय के बेहद प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी के गानों के बहुत बड़े फैन थे. वे उनको अपना गुरु मानते थे. उन्हें 80 और 90 के समय में मोहम्मद रफी का उत्तराधिकारी कहा जाता था. मोहम्मद अजीज ने अलग अलग भाषाओं में 20,000 से अधिक गाने गाए. इनमें इमली का बूटा, बेरी का पेड़, कागज कलम दवातला, दिल दिया है, जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, मेरे दिल अनमोल रत्न, माई नेम इज लखन, तुझे रब ने बनाया होगा, जैसे कई गाने अविस्मरणीय हैं. खुदगर्ज फिल्म का मशहूर गाना आपके आ जाने से अजीज साहब ने गाया था, जिसे अभिनेता गोविंदा और अभिनेत्री नीलम पर फिल्माया गया था. मोहम्मद अजीज ने लता मंगेशकर, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति जैसी मशहूर गायिकाओं के साथ युगल गीतों में भी अपनी आवाज दी. आइए सुनते हैं खुदगर्ज फिल्म का मशहूर गाना आपके आ जाने से मोहम्मद अजीज.
आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से,
गुल से गुजरे.
घर की जंजीरें कितनी ज्यादा दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भागती है. ये पंक्तियां हैं प्रसिद्ध हिंदी जनकवि आलोक धनवा की. आज उनका जन्मदिन है. आलोक धनवा हिंदी के उन बड़े कवियों में हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी. इनकी रचनाओं में सार्वजनिक संवेदना, सार्वजनिक मानव पीड़ा, पीड़ा का विरोध, मर्म सब कुछ गहराई तक उतरता है, जो हमें संवेदित ही नहीं आंदोलित भी करती है. उनकी गोली दागो पोस्टर, जनता का आदमी, कपड़े के जूते और भ्रूणों की बेटियां जैसी कविताएं बहुचर्चित रही हैं. दुनिया रोज बनती है उनका बहुचर्चित कविता संग्रह है. इनकी कविताओं के अंग्रेजी और रूसी भाषा में अनुवाद भी हुए हैं. उन्हें नागार्जुन सम्मान, फिराग गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, नई दिल्ली प्रकाश जैन स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है.
Today is the birth anniversary of the German writer, German Swiss poet, novelist and painter Hermann Karl Hesse. Although he was born in Germany's Black Forest region of Swabia, his father celebrated heritage as a Baltic German and his grandfather's French Swiss roots also. In 1911, Hesse visited India, where he became acquainted with Indian mysticism. He wrote a work like The Glass, The Beach Game, each of which explores the individual search for authenticity, self-knowledge and spirituality. He got the Nobel Prize in 1946.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता सिंह और
अनीता आनंद
को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार
नमस्कार।